नमस्कार। आज शिवोहम के इस मंच पे धरोहर की श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी का, जो हमारे साथ स्मृतियाँ साझा करेंगे पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी रामायणी जी की। उनके कुछ संस्मरण, उनके कुछ रचनाएं मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी के साथ कि वो मंच पे सामने आए और इस मंच को अपने हिसाब से उनके संस्मरण, उनके गीतों के साथ हम लोग के साथ में साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलेश द्विवेदी
धन्यवाद अमित जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक तो पितृ विसर्जन अमावस्या है और ऊपर से इस अवसर पर, विशेष अवसर पर पिताजी को याद करना और इस रूप में याद करना निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं सबसे पहले शिवम संस्था को इसके लिए प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने पिताजी के संदर्भ में जो उनकी स्मृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप सबसे साझा करूं। मेरे पिताजी पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं पिता पर कुछ पंक्तियां कह करके चाहता हूं कि उनको याद करूं, फिर उनके बारे में बताऊंगा। माँ के हैं श्रृंगार पिता, माँ के हैं श्रृंगार पिता,
बच्चों के संसार पिता, माँ के हैं श्रृंगार पिता, बच्चों के संसार
पिता माँ आंगन की तुलसी है द्वारे बंधन वार पिता, माँ आंगन की तुलसी है द्वारे बंधन
पिता, माँ कर्तव्य बताती है, देते हैं अधिकार पिता।
माँ कर्तव्य बताती है देते हैं अधिकार पिता, बच्चों की हर बाधा से लड़ने को तैयार पिता, बच्चों की हर बाधा से लड़ने को तैयार पिता, आज विदा करके बेटी, आज विदा करके बेटी रोए पहली बार पिता, आज विदा करके बेटी रोए पहली बार पिता, बच्चे खुशियां पाए तो कर दे जान निसार पिता, बच्चे खुशियां पाए तो कर दे जान निसार पिता। लेकिन आज की स्थितियां क्या हैं कि भार उठाते थे घर का, भार उठाते थे घर का, अब हैं घर के भार पिता, भार उठाते थे घर का, अब हैं घर के भार पिता,
बंटवारे ने बांट दिए, बूढ़ी माँ लाचार पिता।
बंटवारे ने बांट दिए बूढ़ी माँ लाचार पिता, बंटवारे ने बांट दिए बूढ़ी माँ लाचार पिता। पंडित
नाथ द्विवेदी जी, मेरे पूज्य पिताजी, वे
1932 में जन्मे थे और 2012 में उनका देहावसान हुआ था। पिताजी को बचपन से ही मैंने देखा, पिताजी का एक ग्लैमर, पिताजी की एक आभा, पिताजी का व्यक्तित्व। तो सब पहले भी कीर्तन क्षेत्र में थे, जो विशेष रूप से उनकी रचनाएं अध्यात्म, धर्म, अध्यात्म और सामाजिक चिंतन की हुआ करती थी। कीर्तन मंडलियां पहले बहुत प्रचलित थी। पिताजी की कीर्तन मंडली का नाम श्री सिद्ध ज्ञान संकीर्तन मंडल, उस मंडल का एक अध्यक्ष होता था जो उसको सब गुरु कहते थे। तो पिताजी इस नाते गुरु थे सबके। पिताजी कविताएं लिखते भी, गीत लिखते भी थे, गाते भी थे और प्रस्तुत भी करते थे मंचों पर हारमोनियम के साथ। मतलब वाद्य भी उनके हारमोनियम तो बजा ही लेते थे, हारमोनियम के अलावा वे तबला, ढोलक, बैंजो इत्यादि भी बजाने लेते थे। तो ये उनमें खूबी थी। और जब मैं बचपन था मेरा, मैं 5-6 साल का था, तब की यादें मुझे हैं कि वे अक्सर उनके कार्यक्रम लगा करते थे। कभी कानपुर और कानपुर के बाहर थोड़ा और बड़ा हुआ तो उनका, उनके एकाध कार्यक्रमों को सुनने का, कीर्तन को सुनने का सौभाग्य मिला। तो उनका ग्लैमर देखा, उनकी उनकी भव्यता देखी, बहुत लोकप्रियता थी, बहुत जहां जिधर से निकल जाए तो तमाम लोग चरण स्पर्श करने वाले और गुरुजी गुरुजी और कहने वाले, उनको बहुत लोग मिलते थे। तो मुझे, और कीर्तन में उनका, मंच पर भी उनकी भव्यता सबसे, तब श्रेष्ठ कीर्तनकारों में उनकी गणना थी। उस समय कीर्तन मंडलियां, तमाम कीर्तन मंडलियां कानपुर में थी, जो कुछ मुझे स्मरण है वो मैं उनके नाम आपसे लेना चाहूंगा। पापा जी के परम मित्र थे पंडित कमल किशोर त्रिपाठी जी, तो वे भी बहुत अच्छे कीर्तनकार थे। तो कमल जी और पापा जी की एक बार ही शायद जवाबी कीर्तन हुआ था, लेकिन वो दोनों लोगों ने सोचा कि अब वे भी एक दूसरे का सम्मान बहुत करते थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम लोग आपस में जवाबी नहीं करेंगे। वो उनका सम्मान करते थे, वो उनका सम्मान करते थे बहुत, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से जवाबी करना छोड़ दिया। लेकिन तमाम और कीर्तन मंडलियां, जैसे उस समय हरि किशन थी, दीनानाथ पांडे जी थे, दीनानाथ पांडे जी बहुत अच्छे कीर्तनकार थे, कानपुर के ही थे। और आपको जानकर अच्छा भी लगेगा कि दीनानाथ पांडे जी के पुत्र पंडित कृष्ण कुमार ज्ञानी जो कवि हैं और हमारे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं, तो हम वो हमारे उनके पिताजी हमारे पिताजी के मित्र थे और ज्ञानी भाई हमारे मित्र हैं, गीतकार के रूप में आप उन्हें जानते होंगे, कई दोस्तियों और कार्यक्रमों में उन्होंने मुलाकात हुई होगी आपकी। तो छोटे लाल लंगर थे, हरि किशन जी थे,
दुर्गा प्रसाद जी थे, इस तरह के बहुत कीर्तन मंडलियां। पापा जी होते तो पापा जी को तो बहुत सी याद होंगे,
लेकिन मुझे जो कुछ
विशेष मंडलियां याद हैं वो यही हैं। तो
कीर्तन हुआ करते थे, तो पापा जी उस समय कीर्तन जाते थे और वो मुझको बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि कहीं अगर मैं चला जाऊं वहां पर कार्यक्रमों में साथ में, तो मंच पर बैठने को मिलता था पिताजी के साथ। अच्छा, उस समय एक बात और होती थी जो आजकल कीर्तन हो रहे हैं और उस समय के कीर्तनों में, उस समय कीर्तन मंडलियां दो जिनकी जवाबी होती थी, अगर अकेले ऐसी एक पार्टी का कीर्तन है तो एक तरफ ही स्टेज लगता था, लेकिन जवाबी में दो, आजकल तो एक ही
स्टेज लगा दिया जाता दोनों स्टेज, लेकिन उस समय दोनों तरफ स्टेज लगते थे, बीच में श्रोतागण बैठते थे
और जिधर की पार्टी गायन शुरू करती थी तो श्रोतागण उस तरफ मुंह कर लेते थे, ये मैंने देखा है। और
तो उसका कीर्तन का भी नियम थोड़ा बता दूं आपको, उस समय ये होता था कि
किसी पार्टी को एक को न्योता दिया जाता था कि आप कार्यक्रम शुरू कीजिए, तो वो जैसे अपने कवि सम्मेलनों में वाणी वंदना होती है वैसे ईश्वर की वंदना होती थी, पहला वंदना गाई जाती थी और दूसरा फिर वो एक गीत गाता था, किसी भी फिल्मी धुन पर आधारित गीत होता था, तो उस गीत के आधार पर दूसरी पार्टी को भी वाणी वो ईश्वर की वंदना का गीत प्रस्तुत करने, ईश्वर की वंदना करने के पश्चात उस पार्टी ने जिस धुन के आधार पर गीत गाया है, चाहे वो फिल्मी धुन हो चाहे लोक धुन हो, उसी धुन में उस अपनी तरफ से एक दूसरा गीत प्रस्तुत करना होता था। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी उस धुन में गीत दूसरे पार्टी के पास नहीं होता था, तो जो उनके पार्टी के प्रमुख होते थे, जैसे हमारे पिताजी थे तो वो पार्टी के मुखिया थे, गुरु थे सबके, तो वो उस उतने समय में 10-15 मिनट में वो पूरा गीत, जब तक उधर संगीत वाद्य यंत्र शुरू हुआ है चल रहा, तब तक वो पूरा गीत लिख देते थे। तो मुझे थोड़ा बहुत जो 2-4 पंक्तियां की तुकबंदी तुरंत करने का जो सौभाग्य मिला है वो पिताजी की ही देन है, और पिताजी की तो देन सब कुछ है। मतलब मैं बताऊं कि मैं 7th या 8th में पढ़ता रहा हूंगा, उस समय की बात है कि मैं पिताजी जब चले जाते थे ऑफिस, तो उनकी डायरी उनके रजिस्टर देख देख के ऊटपटांग तुकबंदी, उसका क्या अर्थ निकल रहा है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऊटपटांग तुकबंदी उस कक्षा 7-8 से किया करता था। और पिताजी को इसलिए नहीं बताया था कि पिताजी का मेरे मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे, मैंने कई बार कहा कि पिताजी आप हारमोनियम सिखा दीजिए हमको, ये बता दीजिए कैसे बजाई जाती है, देखता था तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद कुछ और बताएंगे। खैर, वो कीर्तन की बात चल रही, तो वो मैं देखता था और बहुत अच्छा लगता, उनके तो उनके जो रजिस्टर इत्यादि दे करके मैं कुछ तुकबंदी कर लिया करता था, पर मैंने उनको बताया नहीं। पिताजी मेरे गुरु, काव्य गुरु, और उनकी प्रेरणा से, उनके कारण ही मैं जो कुछ आज जो भी लिखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, सब उनकी प्रेरणा है। अगर वो मेरे पिता न होते तो शायद लेखन की ओर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। एक और बात बताऊं कि उनके जो भी मैं आज कुछ उनकी रचनाएं आपके समक्ष साझा करूंगा, वो मैंने उनके मुख से सुनी थी, कहीं पढ़ी नहीं, उनके मुख से सुनते सुनते याद हो गई। एक बात और बता दूं, पिताजी के साथ पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी रामायणी लिखा हुआ है। सन 1975 तक वे कीर्तन क्षेत्र में रहे और कीर्तन के बारे में, लेकिन उस समय तक थोड़ी कीर्तन क्षेत्र में अश्लीलता भी आ गई थी, लोग इस तरह के गीत लिखने लगे थे, तो पिताजी का मन नहीं लग रहा था उस समय। तो उसके लिए थोड़ा उस अनुशासन समिति बनाई गई, एक कानपुर कीर्तनकार महासंघ बनाया गया। उस महासंघ के पिताजी महासचिव थे, कमल कुमार जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो संस्था बनी कि थोड़ा सा अंकुश लगे इन चीजों पर, लेकिन उन पर अंकुश नहीं लगा, तो पिताजी का मन उधर से उचाट हो गया। और चूंकि पिताजी की मूल जो रचना धर्मिता थी वो अध्यात्म संस्कृति और इसी से जुड़ी थी, तो उनका मन रामचरितमानस की ओर रुझान हो गया। और सन 1975 में यहाँ शिवालय में पंडित रामकिंकर जी की कथा हमेशा होती है, तो वहाँ रामकिंकर जी से पिताजी की मुलाकात हुई। तो रामकिंकर जी ने पिताजी को सुना और उनके कुछ भजन भी सुने पिताजी के, तो बड़े प्रभावित हुए, बड़ा आशीर्वाद दिया पिताजी को रामकिंकर जी ने। तो और पिताजी ने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं ये रामचरितमानस कथा भी कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा आशीर्वाद है। तो एक तरह से पिताजी कोई रामकिंकर जी को हमेशा गुरुवत, इसने मतलब गुरुवत सम्मान देते थे पिताजी रामकिंकर जी को, और मैं कह सकता हूँ कि वो रामकिंकर जी के शिष्य उस तरह से तो नहीं बने थे जिस तरह, लेकिन इस तरह से उन्होंने एक गुरु मान करके उनको रामकथा का आरंभ किया था। और रामकथा के माध्यम से भी पिताजी ने धीरे धीरे वही स्वरूप स्थापित कर लिया जो उनका कीर्तन क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता थी, रामकथा के क्षेत्र में भी उनकी लोकप्रियता उतनी ही धीरे धीरे हो गई। और मैंने कई बार जाकर उनकी रामकथाएं सुनने का सौभाग्य मिला, उनके साथ जाने का सौभाग्य मिला, तो ये बड़ा सुखद और मेरे लिए सौभाग्य। और उनकी कई पुस्तकें भी पिताजी की उस रामकथा, पहले तो कीर्तन क्षेत्र की निकली रही होंगी वो, मैंने कुछ पतली पुस्तकें अब इस समय उपलब्ध नहीं है, श्री कृष्ण पुस्तकालय से निकली थी उस समय कीर्तन की, जैसे पंडित कानपुर के विनोद जी कीर्तनकार थे उनकी निकली थी, उसी तरह से पिताजी की कई पुस्तकें निकली थी। वो पुस्तक अभी शायद एक भी पुस्तक, कई पुस्तकें निकली, छोटी छोटी निकलती थी चौपटिया टाइप की, तो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन रामकथा के क्षेत्र में उन्होंने पिताजी ने जो कार्य किया, उसके बाद पिताजी की रामकथा की कई पुस्तकें निकली। और कुछ पुस्तकें मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, ये मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, वो उनकी ये आप देखिए, ये प्रेम योग करके ये पुस्तक है, और ये राम भक्त हनुमान करके, ये पतली पतली छोटी छोटी पुस्तकें हैं। और ये सबसे पहले पिताजी ने धर्मरथ लिखी, मानस की राम गीता, जो राम के जो संदर्भ में, और सैल सुबेल की झांकी ये करती, और इधर काव्य मंजरी लिखी, और भी इसके पश्चात कुछ पुस्तकें लिखी। सत्यनारायण की कथा का पिताजी ने दोहानुवाद किया पूरी कथा का, और बहुत लोकप्रिय हुई वो भी। और पिताजी की ये पुस्तकें राम भक्त हनुमान, हनुमान कवितावली, पढ़ भागी अंगद हनुमाना, धर्मरथ, भरत सरिस को राम से नहीं पूरी भरत पर थी गए, प्रेम योग, राजमाता कैके भी उनका एक काव्य पुस्तक है जो कैके का पूरी, और शैल विनय वचनावली, छोटी सी विनय पत्रिका साहब टाइप की छोटी पुस्तक लिखी, और भी कई पुस्तकें इस तरह से पिताजी ने, ये उनके चित्र इस पे है। तो मैं बताऊं कि एक प्रसंग मुझे बहुत, दो सवैया पिताजी के याद आ रहे हैं जो कीर्तन क्षेत्र में थे उस समय भी बहुत वो पढ़ते थे, जहाँ अच्छे गैदरिंग होती थी, अच्छे लोग उपस्थित होते थे। तो और पिताजी ने, मैं बताऊं जो कह रहा हूँ कि वहाँ लोकप्रियता पूरी, यहाँ से लेकर वो कीर्तन क्षेत्र में भी जब थे तो नेपाल तक की उन्होंने यात्रा की, और जब वो मानस कथा के क्षेत्र में आए उसके बाद भी उनकी वो यात्राएं, उनके वो शिष्य दूर दूर तक उनके शिष्य थे और उन्होंने बुलाते रहे, तो यहाँ से लेकर नेपाल राष्ट्र तक की यात्रा उन्होंने मानस कथा के माध्यम से भी की। उनके दो सवैये मैं सबसे पहले आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, सिंहावलोकन के सवैये, और वो प्रसंग है राधा और उनकी सहेली विशाखा का। जब कृष्ण जी चले गए मथुरा, तो सब तमाम समय हो गया, काफी समय हो गया, वे नहीं लौटे, लौटे ही नहीं, तो अब उस समय जो स्थिति होती है, तो
राधा जी कहती है कि परसों आने को कहा था भगवान ने,
और अभी तक नहीं आए। तो उनकी विशाखा और राधा जी की बातचीत देखें। राधा जी कहती है
ओ मन मोहन ने
कियो कॉल यही चलते घर सो परसों मन मोहन ने कियो कॉल यही चलते घर सो परसों
कही गे हम सो परसों कसकी
भी तो बरसों बरसों न मिलो संदेश को रतिया दिन रही रही तरसों तरसों बरसों से बिना हरिसों पर पूर भयो न अभी परसों परसों मन मोहन ने कियो कॉल यही चलते घर सो। तो ये राधा जी ने कहा विशाखा जी से। तो विशाखा जी कहती हैं कि अगर ये देखिए परसों से शुरू हुआ ये परसों पर समाप्त हुआ। विशाखा जी कहती अगर नहीं आए थे तो कम से कम एक पत्र तो दे देना चाहिए था, कृष्ण को एक पत्र तो भेजना ही चाहिए था। और उसी तरह से उसी सवैया में और उसी सिंहावलोकन में वो सवैया दूसरा प्रस्तुत है पतिया पत्र के लिए। पत्र को अर्ध मिलन भी कहा जाता है कि अगर पत्र मिल जाए आप आजकल तो ये इंटरनेट का जमाना आ गया है तो सब यूं ही मुलाकातें हो जाती हैं, लेकिन उस समय एक महत्वपूर्ण पत्र के साथ जो लगाव होता था कि अगर किसी का पत्र आ गया तो ऐसा लगता था कि वो व्यक्ति हमसे मिल गया, उस पत्र के माध्यम से हमारी मुलाकात हो गई। तो विशाखा जी कहती है पतिया न दई मन मोहन ने मृदु मूर्ति में मारी गई मतियाओ पतिया न दई मन मोहन ने मृदु मूर्ति में मारी गई मतियाओ मतिया की कहो बतिया कहते बतिया सी जरे मन की गतिया। देखिए पतिया की कहो बतिया कहते किससे बात करूं श्लेष देखिएगा पतिया की कहो बतिया कहते बतिया सी जरे बाती सी बतिया सी जरे मन की गतिया गतिया प्रीतियाम भई हमुरी रही रही तड़पो दिन रतिया रतिया न कटे कौन्यु भतिया नहीं मोहन एक दियो पतिया पतिया न दई। तो ये संवाद के जो दो सवैये थे राधा और विशाखा के वो मैंने आपके साथ साझा किए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये मुझे तब से याद है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब से उनको सुना था और मुझे याद है, कहीं मैंने याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कीर्तन की बात आ गई तो एक बात बता दूं, पिताजी जब कीर्तन लिखते थे तो मैंने बताया कि उनका मूल विषय धर्म और अध्यात्म ही होता था। एक कीर्तन उनका मुझे याद आ रहा है, बहुत से देखिए हाँ राम से जुड़ा हुआ दशरथ विरह का एक कीर्तन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जल ले लूं। जब राम जी वनवास चले जाते हैं उनके जाने के बाद दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, तो अब दशरथ जी मृत्यु के क्षणों में के पूर्व क्षणों में अंतिम क्षणों में वो जीवन के अंतिम क्षणों में याद कर रहे हैं राम को, और वो फिल्मी गीत है वो उसकी धुन पर पिताजी ने लिखा था। देखें कहा राम अवध का चंदा इस रघुकुल का उजियारा मेरा लाल भटक, वो फिल्म का गीत था, सूरज कहूं ए चंदा तुझे दीप कहूं या तारा, कहां राम अवध का चंदा इस रघुकुल का उजियारा मेरा लाल भटकता वन वन दशरथ का राज दुलारा। मैं आप सामान्यता देखते हैं मैं कभी सम्मेलनों में गा के नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये पिताजी का गीत है और वो जैसे पढ़ते थे वैसा तो कर मैं पढ़ ही नहीं सकता, वैसा स्वर ही नहीं है मेरा मीठा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनको स्मरण करते हुए जैसा भी पढ़ लो आप स्वीकार करेंगे, ये समझिए कि उनका आदेश है मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ। कहाँ राम अवध का चंदा इस रघुकुल का उजियारा मेरा लाल भटकता वन वन दशरथ का राज दुलारा, कहाँ राम अवध का चंदा हम कब से तरस रहे थे तब चौथे पन तुझे पाए, कुछ समय ही बीता होगा के विश्वामित्र जी आए, हम कब से तरस रहे थे तब चौथे पन तुझे पाए, कुछ समय ही बीता होगा के विश्वामित्र जी आए, तुझे लेकर साथ चले वो यहाँ बही अश्रु की धारा, मेरा लाल भटकता वन वन दशरथ का राज दुलारा, कुछ समय बाद घर आए धनु तोड़ ब्याह कर सीता, बन चले हो वन वनवासी कुछ समय न घर में बीता, कुछ समय बाद घर आए धनु तोड़ ब्याह कर सीता, वन चले हो वन वनवासी कुछ समय न घर में बीताओ, मेरी आंखों के आगे तूने वन राम सिधारा, मेरा लाल भटकता वन वन दशरथ का राज दुलारा, कहां राम अवध का चंदा। श्रवण को जब बाण लगा था दशरथ का वो क्षण याद करते हैं, जब मारा था शरवन को मेरा भाग्य तभी था फूटा, दियो शाप जो अंधी अंधा मेरा लाल सी से छूटा, जब मारा था शरवन को मेरा भाग्य तभी था फूटा, दियो शाप जो अंधी अंधा मेरा लाल इसी से छूटा, ना दोष तेरा के ये है दुर्भाग्य हमारा, मेरा लाल भटकता वन वन दशरथ का राज दुलारा, कहाँ राम अवध का चंदा। और अंतिम इस गीत का अंतिम चरण, हारा 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 राम राम कह करके राजा दशरथ जी रोए, राम राम कह करके राजा दशरथ जी रोए, श्री राम विरह में वो तो है प्राण पखेरु खोए, हा राम राम कह करके राजा दशरथ जी रोए, श्री राम विरह में वो तो है प्राण पखेरु खोए। द्विज प्रेम नाथ ने गाया लिख कर यह दुखद नजारा, कहाँ राम भटकता वन वन मेरा लाल भटकता वन वन, दशरथ का राज दुलारा, कहाँ राम अवध का चंदा इस रघुकुल का उजियारा, मेरा लाल भटकता वन वन दशरथ का राज दुलारा। तो इस तरह की उनके कीर्तन होते थे, एक झलक कोशिश की मैंने देने की। और मैंने कभी अपनी रचनाएं पिताजी को डर के कारण कभी उनको दिखाता नहीं था कि मैंने कुछ लिखा है। बात है 1982 की, मैं यूपी स्टेट हैंडलूम में सहायक प्रबंधक के रूप में मैंने नौकरी की, सेवानिवृत्त हुआ, वहां से वीआरएस ले लिया था। तो 1982 की बात है, वहां पर हैंडलूम की कल्चर सोसाइटी थी, तो उस कल्चर सोसाइटी का फंक्शन था, तो उसमें सोविनियर भी निकली थी, सोविनियर में कुछ रचनाएं मांगी थी, उस रचना को पुरस्कृत भी किया गया था कविता और कहानी को। तो मुझे कविता में तृतीय पुरस्कार और कहानी में द्वितीय पुरस्कार मिला था 1982 में। तो वो समारोह होना था, समारोह मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी आपको लाजपत भवन में एक कार्यक्रम है हमारे ऑफिस का, उसमें चलना है। बोले नहीं तुम लोग जाओ ऑफिस का कार्यक्रम है, हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा नहीं पिताजी, वहाँ मुझे कविता में और कहानी में पुरस्कार मिला है, वो मिलेगा सबके सम्मुख वो दिया जाएगा, घोषित हुआ है। बोले तुमने कविता लिखी है, कहाँ से निकाली, कहाँ से उठाई। हमने कहा कहीं से उठाई नहीं है, और कविता भी मैंने लिखी और कहानी भी मैंने लिखी है, और मैं थोड़ा बहुत आपके रजिस्टरों से थोड़ा बहुत करके देख के कुछ तुकबंदी जोड़ लेता था वो काफी समय से। बोले अरे तुमने बताया नहीं हमको पढ़ाई में। हमने कहा नहीं पिताजी पढ़ाई में बिल्कुल पूरा, और तब भी मैं LLB कर रहा था उस समय भी। खैर गए तो मुझे पुरस्कार मिला, तो बहुत प्रसन्नता हुई उनको, सब माताजी भी गई साथ में और लाजपत भवन में। तो उस समय पहली बार उनको पता चला कि मैं कविता 1982 में नहीं मैं लिख रहा था लेकिन कतई बार। और मेरी मंची यात्रा 1984 से आरंभ हुई, क्योंकि LLB का मेरा अंतिम परीक्षा जो थी LLB प्रोफेशनल ईयर की, वो 1984 में थी, जिसका रिजल्ट बाद में 85 में आया। लेकिन पिताजी का सख्त आदेश था कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती है, यद्यपि नौकरी मैंने 1980 में ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनका यह आदेश है जब तक जो कहीं शिक्षा कंप्लीट नहीं होती है तो कहीं कब कार्यक्रम को कभी संभालू नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो खैर अपना संदर्भ आ गया था जो उस पुरस्कार मिलने का, तो बड़ा मतलब उनको आश्चर्य हुआ कि तुम कविताएं लिखते हो। तो मेरा रुझान 1977-78 से हो गया, एक आध कवि सम्मेलन सुन लिए थे, और हम प्रमोद तिवारी तो हम लोग अलग अलग मतलब एक ही हाथे में रहते थे, अलग अलग स्कूलों में पढ़े, लेकिन हमारी सबकी शिक्षा एक साथ हुई। प्रमोद तिवारी के मंचों पर एक दो साल पहले जाने लगे थे, यद्यपि हमसे 1-1.5 महीने छोटे थे, लेकिन उनका आना जाना पहले शुरू हो गया था, मेरा बाद में शुरू होगा। तो पिताजी की बात चल रही थी, तो मुख्य रूप से पिताजी पर केंद्रित रहना चाहता हूँ। एक और कीर्तन उनका मैं आपके साथ साझा कर, देखिए उनमें वैरायटी भी कितनी थी, कीर्तनों में भी कितनी वैरायटी थी। जो भी अब एक तो वो विरह वेदना का सुना आपने, राम दशरथ के विरह का, एक कीर्तन और मैं चाहता हूँ पढ़ू सुनाऊ आपको, वो भांग शंकर और पार्वती जी के बीच एक मनोविनोद का है वो, और वो फिल्म एक कीर्तन एक गीत फिल्मी गीत है, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में
तुझको खबर कब होगी। उस पर पिताजी ने वो लिखा कि भोला झोले में धतूरा डाल के कहां जाते।
बाद में इस विचार को कई कीर्तनकारों ने अपने अपने तरह तरह से उसको ले लिया। चोरियां ऐसा नहीं है कि कभी सम्मेलनों में होती, कीर्तन क्षेत्र में भी चोरियां होती थी और एक कर विचार लेकर के वो दूसरा अपने उस विचार को दूसरे फिल्मी धुन में कर देते थे लोग। खैर वो तो उस समय की बातें थी, लेकिन मेन बात कि ये पिताजी ने मूल रूप से पहली बार लिखा था कि शंकर पार्वती जी का के बीच के
मनोत की बात, तो वो मैं देखिए भोला
कैसा स्वस्थ ईश्वर भगवान भी शामिल है तो कहीं मर्यादा का भी वो ना हो, क्योंकि जब हम कोई बात चाहे हम हास कविताएं लिखते हैं तो कहीं भी मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। अगर हम ईश्वर को कहीं ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना, और मनोविनोद भी अगर है तो देखिए। मैं जल थोड़ा फिर ले लू। देखिए वो कीर्तन है, आनंद लीजिएगा।
भोला झोले में धतूरा डाल के
कहाँ जाते,
जाते छान के गोला।
देखिए पार्वती जी कह रही शंकर जी से शिकायत।
भोला झोले में धतूरा डाल के कहाँ जाते, कहाँ
जाते छान के गोला। भोला अब देखिए ये जो घर की महिलाओं को शिकायत होती है, सामान्य रूप से पार्वती जी को उसी रूप में पिताजी ने शिकायत पार्वती जी की ओर से शंकर जी से की। हाथ घिस गए भंग पीसते उठा उठा सिलबट्टा, हाथ घिस गए भंग पीसते उठा उठा सिलबट्टा, मैंने इसका स्वाद न जाना मीठा है या खट्टा है रे। भोला झोले में धतूरा डाल के कहाँ जाते, कहाँ जाते छान के गोला। हाथ घिस गए भंग पीसते उठा उठा सिलबट्टा, मैंने इसका स्वाद न जाना मीठा है या खट्टा है रे। भोला झोले में धतूरा डाल के कहाँ जा। एक और शिकायत है पार्वती जी की, वो भगवान शिव से करती हैं, भगवान शंकर से करती हैं। देखिए वो भी एक सामान्य धर्म की शिकायत हो सकती है। ब्रह्मा ब्रह्माणी के संग में विष्णु रमा के संग, ब्रह्मा ब्रह्माणी के संग में विष्णु रमा के संग, तुम तो भोला साथ में रखते मेरी सौतन भंग।
ब्रह्मा ब्रह्माणी के संग में विष्णु
रमा के संग, ब्रह्मा ब्रह्माणी के संग में विष्णु रमा के संग, तुम तो भोला साथ में रखते मेरी सौतन भंग है रे। भोला झोले में धतूरा डाल के कहाँ जाते छान के गोला। भोला और आगे देखें, बच्चों के को लेकर के बड़ी चिंतित हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं। देखिए लड़के बच्चे वाले होकर अधिक न घूमो आप, ये भी सामान्य घरों की शिकायतें हो सकती है। देखिए बच्चों पर क्या असर पड़ेगा आपके इस आचरण का, आपके इस व्यवहार का, अपने पति से महिलाएं कहती हैं सामान्यतः। वो पिताजी के मन में उसी तरह की भावनाएं रही होंगी इस गीत को लिखते हुए, इस धुन पे इस गीत को लिखते हुए। लड़के बच्चे वाले होकर अधिक न घूमो आप, लड़के बच्चे वाले होकर अधिक न घूमो आप, कार्तिक और गणेश बिगड़ी है देख के अपन बाप है रे। भोला झोले में लड़के बच्चे वाले होकर अधिक न घूमो आप, कार्तिक और गणेश बिगड़ी है देख के अपन बाप है रे। भोला झोले में धतूरा डाल के कहाँ जाते, कहाँ जाते, चांद के गोला भोला। और अंतिम बंद है इस गीत का, मनोविनोद के इस गीत का, कि प्रेमनाथ कहे कहे पार्वती सुन लो प्यारे भोला, प्रेमनाथ कहे कहे पार्वती सुन लो प्यारे भोला, दूध दही से अच्छा, प्रेमनाथ कहे कहे पार्वती सुन लो प्यारे भोला, भांग धतूरे से अच्छा है पी लो कोका कोला, प्रेमनाथ कहे कहे पार्वती बात, प्रेमनाथ कहे कहे पार्वती सुन लो प्यारे भोला, भांग धतूरे से अच्छा है पी लो कोका कोला, है रे भोला झोले में धतूरा डाल के कहाँ जाते, कहाँ जाते, चांद के गोला भोला। तो ये एक और कीर्तन उनका जो मनोविनोद पर आधारित था, विषय पर, एक भगवान शिव और पार्वती के मध्य का, वो मैंने आपके साथ साझा किया। बहुत सी उनकी तो कीर्तन की यात्राएं रही हैं। उस समय एक पिताजी लखनऊ बहुत जाया करते थे, और लखनऊ इलाहाबाद भी, इलाहाबाद के राजेश पंडा जी थे, एक अच्छी कीर्तन पार्टी थी, लखनऊ में अमर जी की एक पार्टी थी, तो इस तरह की बाहर भी बहुत अच्छे कीर्तन मंडल थे। और अब भी पिताजी के कुछ शिष्य नेपाल में हैं, उनके कभी कभी फोन आते हैं, और झांसी में कुछ हैं, तो वो सब याद करते हैं, तो स्मृतियां में ही हैं। तो उनका एक मैं बताऊं कि मैं जब आकाशवाणी का एक कार्यक्रम मैंने पहली बार 1990 में किया था, आकाशवाणी का कार्यक्रम करके जब मैं लौटा घर आया, तो उस समय चेक भी मिल गई थी मुझे 347 रुपये की चेक थी, तो मैंने आके पिताजी को दी। हमने कहा पापा जी, ये आज आकाशवाणी से पहली बार कार्यक्रम किया था, तो उसका ये चेक मिला। तो बोले तुमको तो बहुत मिला, जब मैं अपने जमाने में आकाशवाणी में जाता था, तो ये जो 337 या 348 रुपये, तो हमारा तो 37-38 रुपये होता था पेमेंट, और वो भी अकाउंट पे ही उसमें नहीं होते थे, चेक मिलती थी, और उस चेक को काउंटर पर जाकर के, बैंक के काउंटर पर जाकर कैश कर ले। तो हम लोग बताते थे कि वो हम उसके लिए रुके, शाम तक मिल पाती थी चेक, उसके लिए रुके अगले दिन बैंक, तो हम लोग सीधे क्या करते थे, वहीं बाहर एक पान वाला बैठता था, उसको चेक दे देते थे, 40 रुपये की चेक अगर है तो वो 38 रुपये हमको, 38 किए तो 36 रुपये हमको दे देता, 2 रुपये काट लेता था, अगले दिन वो बैंक जाके काउंटर से उसका बियर चेक मिलती थी, उसका पैसा ले लेता था। तो ये पिताजी ने अपने समय की याद साझा की, तो ऐसे बताने लगे। एक उनका गीत आकाशवाणी से भी बहुत प्रचलित रहा था, वो गीत पहली नौकरी का, पहल नौकरी कीन अवधि का गीत है। तो वो गीत मैं बताऊं आपको कि पिताजी से मैंने सुना था कि वो जब पहली बार गए थे पिताजी, तो उस गीत में एक आध जगह कुछ करेक्शन थे, वो रमई काका जी उस समय आकाशवाणी का वो प्रोग्राम देख रहे थे, तो रमई काका जी ने कहा कि बेटा इसको, पापा जी से की बात और रमई काका जी की बात बता रहा हूँ, रमई काका जी ने पापा जी से कहा कि बेटा इसको एक आध जगह ऐसे कर लो, ये थोड़ा अवधि से इतर हो रहा है, और तो पापा जी ने उसको कर लिया। तो वो गीत आकाशवाणी से प्रसारित हुआ, और फिर कई बार प्रसारित हुआ, उस समय तो दूरदर्शन तो था नहीं, और मैंने देखा कि रेडियो पर जब वो गीत आता था, तो तमाम लोग बैठ के सुनते थे घेर करके, जैसे रेडियो पर आना है तो तब भीड़ लग जाती थी, और मेरे उनका पंडित जी का रेडियो पर आ रहा है, रेडियो प्रोग्राम आ रहा है, तो इतना महत्वपूर्ण उस समय रेडियो का प्रोग्राम होता था। तो वो गीत भी हास्य पर आधारित है, और अवधि में है, और उस रमई काका जी के समय का है, और रमई काका जी तो अवधि के एक अप्रतिम हस्ताक्षर थे, लेकिन पिताजी ने रमई काका जी के उस आकाशवाणी के उस प्रोग्राम में वो कविता पढ़ी, वो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। देखिए किस तरह की कविता थी। पहली नौकरी, एक व्यक्ति गांव से शहर आता है, और अवधि में देखें, हम पहिल पहिल नौकरी किन, हम पहिल पहिल नौकरी किन, हम पहिल पहिल, हम पढ़े लिखे कछु नाई रहन, हम पढ़े लिखे कछु नाई रहन, मकई क्वा दो जुंदरी चबाए, हम घर मा रही कई विपत्ति सहन, मकई क्वा दो जुंदरी चबाए, हम घर मा रही कई विपत्ति सहन। ये भी गीत मैंने पिताजी से नहीं सुना था, जो आकाशवाणी से कई बार सुना था तो मुझे याद हो गया था, वही वही कहीं हो सकता है कि आप जगह भूल जाऊं मैं। हम पहिल पहिल नौकरी किन, हम पहिल पहिल नौकरी किन, हम पढ़े लिखे कछु नाई रहन, हम पढ़े लिखे कछु नाई रहन, मकई क्वा दो जोंधरी चबाए, हम घर मा रही कई विपत्ति सहन। अब चली सहर नौकरी करी, एक दिन मन ऐसन भवा भान, हम अब चली सहर नौकरी करी, एक दिन मन ऐसन भवा ज्ञान, हम पहिन सलू का और दाती और बांध के सतुआ और किसान, हम पहिन सलू का भी कोई वस्त्र होता हो कुर्ते कमीज टाइप का, हम पहिन सलू का और दाती और बांध के सतुआ और किसान, किसान हम पहिन सलू का और दाती और बांध के सतुआ और किसान, जल्दी टेसन कै राहलीन, हम पहिल पहिल नौकरी किन, हम पहिल पहिल नौकरी किन। अब आगे देखिए, हम टीकस लई कै टेसन पे गाड़ी की लागन करे आस, हम टीकस लई के टेसन पे गाड़ी की लागन करे आस, जब गाड़ी आई कंपू की घुस गैन झटते फट क्लास, उस समय फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास इस तरह से होता था, जब गाड़ी आई कंपू की घुस गैन झटते फट क्लास, वही माँ एक बाबू बोली परे, वही माँ एक बाबू बोली परे, तुम यही माँ कैसन घुसिया, यो यो थर्ड क्लास कई डिब्बा है, तुम थर्ड क्लास टी कस लायो, वही माँ एक बाबू बोल परे, तुम यही माँ कैसन घुसिया, यो यो थर्ड क्लास कई डिब्बा है, तुम थर्ड क्लास टी कस लायो, हम वालन यही ते हो ई का, हम वालन यही ते हो ई का, हम यही मनीचे पड़े रहब, हम यही डिब्बा से ना उतरब, हम यही मन, हम यही दम जैसे तैसे खड़े रहब, हम जैसे तैसे पड़े रहब, हम जैसे तैसे पड़े रहब। उसी समय क्या होता है, एक आध लाइन भूल रहा हूं, तब ही एक बाबू करिया करिया कपड़ा पहिरे, तब ही एक बाबू आवा हाथे माली है सरौता अस, पंच करते थे टिकट पहले, हाथे माली है सरौता टी टी आया, हाथे माली है सरौता अस, टीकस मांगिस हम दिखलावा, उ देख दाख टीकस हमार, डिब्बा से हमें उतार दे दिस, डिब्बा से हमें हटाए दिस, एक थर्ड क्लास कई डिब्बा माँ, हमका जाके बैठाए दिस, एक थर्ड क्लास कई डिब्बा माँ, हमका जाके बैठाए दिस, कौन्यू ना कौन्यू हालत ते, कौन्यू ना कौन्यू हालत ते, हम कानपुर माँ पहुंच गयन, 10 रुपया खाना कपड़ा पर, एक बाबू घर नौ एक साहब घर नौ करो भयन, 10 रुपया खाना कपड़ा पर, एक साहब घर नौ करो भयन। अब देखिए स्थितियां क्या है, वहां नौकरी लग गई 10 रुपये पर महीने की, उस समय के हिसाब से देखिए अंतिम चित्र है। एक दिन साहब हमसे बोले, कमरे से ले आओ पीक दान, हम जाए के देखा कमरे मा, मुल हमका कछु नाही दिखान, एक दिन साहब हमसे बोले, कमरे से ले आओ पीक दान, हम जाए के देखा कमरे मा, मुल हमका कछु नाही दिखान, हम आए के बोलन साहब से, ना पीक दान है आस पास, कौन नौ ससुरा थुकी मारी सी है, जो रखा चांदी के गिलास, हम आए के बोलन साहब से न पीक दान है, आस पास गौ नौ ससुराथ की मारी सी है, जो रखा चांदी कई गिलास, इतने बतिया सुनते हमार। क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? इतने बतिया सुनते हमार, उझट लिस नौकरी छीन, हम पहिल पहिल नौकरी कीन, हम पहिल पहिल नौकरी कीन, हम पहिल पहिल नौकरी कीन। ये उनकी एक हास्य रचना जो अवधि की थी और जो उन्होंने आकाशवाणी में पढ़ी थी और अनेक बार प्रसारित होती थी, कोई कई बार 8-10 बार तो मैंने खुद सुनी, मुझे जहां तक याद है, और सुन सुनकर ये इतनी सी याद हो गई। और मैं कहां कहां तक उनकी रचनाओं का उल्लेख करूं और उनकी यात्राओं का, उनके इधर ये जो घनाक्षरियों में पापा जी ने काफी, और पंडित धर्मपाल अवस्थी जी ने भी उनकी एक किताब में उन्हें भूमिका लिखी थी, एक किताब में। इसमें तो डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी जो दिल्ली के साहित्यकार थे, उनकी भूमिका इस किताब में है। इसके कुछ मैं आपको मैं सुना देता हूँ कुछ छंद। ये काव्य मंजरी शतक जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें से ये पुस्तक भी है, तो इसके कुछ घनाक्षरी छंद मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखें देखें, ये मित्रता का चित्र, प्रेम प्यार प्रीति मात्र कहने के शब्द नहीं।
घनाक्षरी पिताजी की घनाक्षरी की है, इसमें सारे घनाक्षरी हैं, अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई है।
प्रेम प्यार प्रीति मात्र कहने के शब्द नहीं, साथ साथ भाव भी पवित्र होना चाहिए। प्रेम प्यार प्रीति मात्र कहने के शब्द नहीं, साथ साथ भाव भी पवित्र होना चाहिए। सुख में भी साथ दे जो, दुख में भी साथ दे जो, ऐसी चित्त वृत्ति वाला मित्र होना चाहिए। सुख में भी साथ दे जो, दुख में भी साथ दे जो, ऐसी चित्त वृत्ति वाला मित्र होना चाहिए। मित्र के चरित्र में लगा दे जो, मित्र के चरित्र में भी लगा दे जो चार चांद, मित्र के चरित्र में भी लगा दे जो चार चांद, ऐसा ऊंचा मित्र का चरित्र होना चाहिए। और प्रेमनाथ जो मिसाल आज भी हो बेमिसाल, प्रेमनाथ जो मिसाल आज भी हो बेमिसाल, मित्रता का एक ऐसा चित्र होना चाहिए। मित्रता का एक ऐसा चित्र होना चाहिए, मित्रता का एक ऐसा चित्र होना चाहिए। और एक और देखें कि मित्र और कैसा होना चाहिए, इसी संदर्भ में आ गया। वो जो भूमि बंजर तो भूमिहीन ही भला है, वो जो भूमि बंजर तो भूमिहीन ही भला है, भूमि हो तो उप भूमि हो तो उसे उपजाऊ होना चाहिए। वो जो भूमि बंजर तो भूमिहीन ही भला है, भूमि हो तो उसे उपजाऊ होना चाहिए। वो जो भीरु भट तो निपट किस काम का है, वो जो भीरु भट तो निपट किस काम का है, योद्धा हो तो उसको जुझाऊ होना चाहिए, योद्धा हो तो उसको जुझाऊ होना चाहिए। हो जो किसी के कुपुत्र तो है बांझे होना सही, हो जो किसी के कुपुत्र तो है बांझे होना सही, पुत्र हो तो यश का कमाऊ होना चाहिए। इतने सलीके से बात कही गई है, पुत्र हो तो यश का, पिता का नाम परिवार का नाम रोशन करें, पुत्र हो तो यश का कमाऊ होना चाहिए, हो जो मित्र अज्ञानी तो ज्ञानी शत्रु ही है ठीक, हो जो मित्र अज्ञानी तो ज्ञानी शत्रु ही है ठीक, प्रेमनाथ काम का प्रेमनाथ काम ना चलाऊ होना चाहिए। तो काम चलाने वाली कोई चीज की भाई इस मित्र से काम चल जाएगा, इस जमीन से काम चल जाएगा, नहीं ये नहीं, काम चलाऊ कोई चीज नहीं होनी चाहिए, एक पुष्ट चीज होनी चाहिए, स्थाई चीज होनी चाहिए। और देखें कुछ, हाँ ये क्या क्या बढ़िया, अच्छा कनेक्शन ये आ गई, सामने आ गई, बहुत सुंदर प्रयोग है। जीवन की कड़ी में बड़ा महत्व तो लकड़ी का, शब्द मैत्री देखिएगा, आज भी कनेक्शन तमाम लिखी जा रही है और लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द मैत्री के दृष्टि से मैंने पिताजी से बिंदु जी के तमाम छंद सुने, बिंदु जी के बहुत सुंदर पढ़ते थे पिताजी, बिंदु जी के छंदों में भी शब्द मैत्री बहुत श्रेष्ठ होती थी, और उसके बाद अगर मुझे अच्छे लगते थे तो पंडित धर्मपाल अवस्थी जी के छंदों में शब्द मैत्री बहुत श्रेष्ठ होती थी, और उसके बाद कुछ छंद पिताजी के जो सामने आ रहे हैं उनमें भी आप शब्द मैत्री का चमत्कार देखिएगा। जीवन की कड़ी में बड़ा महत्व लकड़ी का, जीवन मरण में है दृष्टि आती लकड़ी, जीवन की कड़ी में बड़ा महत्व लकड़ी का, जीवन मरण में है दृष्टि आती लकड़ी, शिशु काल से ही होती लकड़ी हमारे साथ, बनकर पालना सुलाती हमें लकड़ी, बनकर पालना सुलाती हमें लकड़ी, ब्याह में भी बैठे हम लकड़ी की पालकी में, ब्याह में भी बैठे हम लकड़ी की पालकी में, चौथेपन में सहारा पहुंचाती लकड़ी बेत, ब्याह में भी बैठे हम लकड़ी की पालकी में, चौथेपन में सहारा पहुंचाती लकड़ी, लकड़ी ही चिताबन मृत्यु पर प्रेमनाथ, जलती स्वयं हमें भी जलाती लकड़ी, जलती स्वयं हमें भी जलाती लकड़ी। जल एक ये घनाक्षरी देखिए, कौड़ी को लेकर के कितना सुंदर प्रयोग है। संपत्ति बटोरने की होड़ में ही लगे रहे, संपत्ति बटोरने की होड़ में ही लगे रहे, कौड़ी को करुण करने की दौड़ा दौड़ी की, संपत्ति बटोरने की होड़ में ही लगे रहे, कौड़ी को करुण करने में दौड़ा दौड़ी की, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर हो गए करोड़ी मल, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर हो गए करोड़ी मल, कौड़ी चित करने में कौड़ी की भी सात पर बात लंबी चौड़ी की, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर हो गए करोड़ी मल, कौड़ी की भी सात पर बात लंबी चौड़ी की, कौड़ी चित करने में चित्त से भजन भूले, कौड़ी चित्त करने में चित्त से भजन भूले, प्रेमनाथ चिंता बस रही कौड़ी कौड़ी की, प्रेमनाथ चिंता बस रही कौड़ी कौड़ी की, बात क्या दो कौड़ी की है रहे ना कौड़ी के दिन, बात क्या दो कौड़ी की है रहे ना कौड़ी के दिन, पड़ी जब चोट यमराज की हथौड़ी की, बात क्या दो कौड़ी की रहे ना कौड़ी के भी तीन, रहे ना कौड़ी के तीन, पड़ी जब चोट यमराज की हथौड़ी की, पड़ी जब चोट यमराज की हथौड़ी की। इसी तरह से घूर, घूर जो होता है, कहते नहीं 12 साल में घूरे के दिन भी बहुत दौड़ते हैं, तो उस घूर को लेकर के पिताजी ने एक अनूठा छंद लिखा, देखें। देखा होगा घूर पर देखा होगा घूर पर घूर के ना देखा होगा, कोई कूड़े को बहुत ध्यान से नहीं देखता है इस घूर को, देखा होगा घूर पर घूर के ना देखा होगा, अब जरा घूर को तो घूर घूर देखिए, देखा होगा घूर पर घूर के ना देखा होगा, अब जरा घूर को तो घूर घूर देखिए, कूड़ा और गोबर है डाला जाता रोज रोज, पहले तो यही सब कूड़े में होता था मुख्य, कूड़ा और गोबर है डाला जाता रोज रोज, बोले ना स्वभाव से है मजबूर देखिए, उसको यही चीजें पढ़ती है, लेकिन वो कूड़ा और घूर गोबर तो डाला जाता रोज रोज, बोले ना स्वभाव से है मजबूर देखिए, शांति क्षमाशील धैर्य पर उपकार आदि, शांति क्षमाशील धैर्य पर उपकार आदि, घूर में ये सदगुण भरपूर देखिए, घूर में ये सदगुण भरपूर देखिए, और प्रेमनाथ अधिक अनाज हेतु यही घूर, प्रेमनाथ अधिक अनाज हेतु यही घूर, खेतों में पहुंच होता चूर चूर देखिए, खेतों में पहुंच होता चूर चूर देखिए। और माटी, माटी शब्द को लेकर के एक और सुंदर गणाक्षरी मेरे समक्ष है पिताजी की लिखी हुई, बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं आज पिताजी के बारे में चर्चा करने का, वैसे तो अवसर मिला लेकिन इस तरह से चर्चा करने का और इतनी विस्तृत चर्चा करने का अवसर पहली बार मिला, इसके लिए पुनः शिवम संस्था को मैं आभारी हूं, और उनके जो पदाधिकारी मेरे से अनुज हैं मैं उन्हें बहुत चाहे भावना तिवारी और अमित और पूरा परिवार मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं उन्हें। देखिए माटी के संबंध में, धन्य धन्य माटी मेरे देश, धन्य धन्य माटी प्यारी मेरे देश भारत की, धन्य धन्य माटी प्यारी मेरे देश भारत की, रोम रोम भारतीयों के समाई माटी है, धन्य धन्य माटी मेरी प्यारी मेरे देश भारत की, रोम रोम भारतीयों के समाई माटी है, प्रेमनाथ माटी ने ही पाला हम लोगों को है, प्रेमनाथ माटी ने ही पाला हम लोगों को है, तभी तो हमारी माता कहलाई माटी है, प्रेमनाथ माटी ने ही पाला हम लोगों को है, तभी तो हमारी माता कहलाई माटी है, भारत की माटी का महत्व कहें कहां तक, भारत की माटी का महत्व कहें कहां तक, यहां की तो भगवान ने भी खाई माटी है, भारत की माटी का महत्व कहें, अरे मैं थोड़ा भूल गया, भारत की माटी का महत्व कहें कहां तक, यहां की तो राम भगवान को भी भाई माटी है, यहाँ की तो भगवान को भी माई माटी है, माखन मलाई दूध रबड़ी से मीठा जान, माखन मलाई दूध रबड़ी से मीठा जान, आके यहाँ राम कृष्ण ने भी खाई माटी है, आके यहाँ राम कृष्ण ने भी खाई माटी है, आके यहाँ राम कृष्ण ने भी खाई माटी है। कार्यक्रम का समय भी हो रहा है 58 मिनट 44 सेकंड 45 सेकंड हो रहे हैं, बस कुछ अंतिम गणाक्षरियों को एक दो पढ़ करके मैं आप सबसे विदा भी लेना चाहूंगा। पानी, देखें माटी, हाँ माटी का एक और छंद सामने आ गया, पांच तत्वों से रचित मानव शरीर यह, पांच तत्वों से रचित मानव शरीर यह, जिसमें है विद्यमान एक तत्व माटी का, जीवन मरण में है शरण, जीवन मरण में शरण देती माटी सदा, जीवन मरण में शरण देती माटी सदा, बिना भेदभाव सबसे महत्व माटी का, माटी को सभी से प्यार सबको है माटी प्रिय, दूर से दिखाई देता अपनत्व माटी का, महिमा माटी की कहे कहां तक प्रेमनाथ, ब्रह्मा जी की सृष्टि में बड़ा महत्व माटी का, ब्रह्मा जी की सृष्टि में बड़ा महत्व माटी का और पानी वाला, जो मैं कह रहा था, कभी दुख पानी बन नेत्र, कभी दुख पानी बन नेत्रों से छलक पड़े, कभी कभी खुशी में भी भर जाता पानी है, कोई पानी पानी होता कोई ने कोई, कोई पानी पानी होता कोई पानी रख लेता, कभी कभी आंखों का भी मर जाता पानी है, पानी पर चढ़ जाता कोई किसी बात पर, तो पानी पर चढ़ जाता कोई किसी बात पर, किसी पानी दार का उतर जाता पानी है। अब प्रेमनाथ पानी की कहानी कहे कहां तक, कभी कभी हद से गुजर जाता पानी है, कभी कभी हद से गुजर जाता पानी है। बहुत सुखद रहे ये
आप सबके साथ में, और चार पंक्तियां कह करके मैं विदा लेना चाहूंगा पिताजी के लिए। मैं उस समय तो ये सब संसाधन थे नहीं, तो मैंने पिताजी का एक गीत जो 1998 में रिकॉर्ड किया था टेप रिकॉर्ड से, वो अपने बेटे के द्वारा, बेटा थोड़ा बहुत तकनीकी जानता है, बेटे के माध्यम से उसको YouTube में डलवा दिया है। कल कल के करे ना कल वो गीत आप सुन सकते हैं YouTube में जाकर के, पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी रामानी डालेंगे वो गीत मिल जाएगा। अंतिम चार पंक्तियां कहकर विदा लेना चाहूंगा कि हृदय में दर्द की काई जमी महसूस होती है, हृदय में दर्द की काई जमी महसूस होती है, तुम्हारे बिन इन आंखों में नमी महसूस होती है, हमारे दोस्त कहते हैं पिता ने क्या कमी छोड़ी, हमारे दोस्त कहते हैं पिता ने क्या कमी छोड़ी, कमी कोई नहीं है पर कमी महसूस होती है, कमी कोई नहीं है पर कमी महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद संस्था का, और भाई अमित और भावना को बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी जो पिछले एक घंटे में हम आपने जो संस्करण वास्तव में ताजा कर दिए, होगा में ताजा कर दिया होगा, बहुत सारे उनकी रचनाएं,
बिल्कुल
धनाक्षरी शिवोहम परिवार की ओर से, वैसे तो आप हैं लेकिन फिर भी एक औपचारिकतावश मैं पूरे शिवोहम परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही हों, कि हम लोग ऐसे ही सहयोग के सहयोग होते रहेंगे, जुड़े हुए सभी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बजे हम अगली कड़ी तारीख करने जा रहे हैं, सबसे उसमें भी जुड़े रहने की उसमें ही, और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
नमस्कार।